संबंध का,
ये मेरे सखा हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे प्रियतम हैं, ये मेरे प्राण बल्लभ हैं, उनसे संबंध जोड़ लेते हैं और कृष्ण इस संबंध को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वो जब देखते हैं इसकी इंद्रियां इसको कहीं बाहर बहका करके ले जाएंगी, झट कृपा कर लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और उनका शून्य है नहीं, जीरो, उनको तो कोई है नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, इसलिए उसी में बह करके मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका रक्षा करने वाले नहीं है, इसलिए उनका पदस्खलन नहीं होता। इसलिए वहां पर बतलाया है, नते माधव का ताव का क्वचित भ्रशंत मार्गा तई बद्ध सौहिता। ब्रह्मा जी कहते हैं उनके लिए, कृष्ण के लिए प्रार्थना करना, बच्चों को और सखाओं को कंदर में बंधन करने देने के बाद में उन्होंने देखा जे सखाओं के साथ में तो नहीं वैसे ही खेल रहे हैं, तब प्रार्थना कर रहे हैं। न माधव न ते माधव ताव का क्वचित, जैसे अद्वैतवादी लोग, जति लोग, योगी लोग जैसे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, तावका आपके जो प्यारे जो भक्त लोग हैं जिन्होंने आपको अपना सुहृद सखा बंधु पुत्र और प्रियतम समझा है, वो लोग ऐसे न प्रश्यन्ति, तनिक नहीं गिरते। इति अर्थो, यही अर्थ है, क्यों कि वो बद्ध सौहृद रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, विघ्न देने वाले, विघ्न पैदा करने वाले जितने भी देवता हैं उनके मस्तक पर पैर रख करके चले जाते हैं। नारद जी के लिए मृत्यु आई, क्या किया उन्होंने, ध्रुव जी को मृत्यु आई, उसके सिर पर पैर रख करके वो चले गए, उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। इसलिए विघ्न आएंगे हो सकता है, किंतु वो विघ्न टकरा करके चूर चूर हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यहां पर तद्वत का तात्पर्य ये मतलब, जैसे वो पदस्खलित होते हैं वैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, इतना मान लो, कहे नहीं नहीं ऐसा भी अर्थ मत लो, तनिक भी वो गिरते हैं। तद्वत वो जैसे गिर जाते हैं वैसे वो नहीं गिरते हैं, थोड़ा सा लुढ़क जाते हैं, थोड़ा सा मट्टी पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा तो जरूर गिर जाते हैं, ऐसा मत अर्थ लगाओ, एकदम नहीं गिरते हैं, किंतु पदस्खल होते पारे, यह अर्थ संगत नहीं था। क्यों, अरे भगवान उसके सुहृद है ना, उनके हर सब समय रक्षा करने वाले हैं, उनका चक्र रक्षा करने वाला है, इसलिए वो नहीं गिरते हैं। इस प्रकार से जति लोग भक्तों की तरह में अपने हृदय की ग्रंथि को, अहंकार की ग्रंथि को छेदन नहीं कर पाते। हम लोग समझते नहीं कि अहंकार क्या है, अहंकार माने क्या है, मैं शरीर हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका पुत्र हूं, ये जो अहंकार की ग्रंथि है ना, एक जन्म की नहीं कोटि कोटि जन्मों की है, ये छोड़ती नहीं। कोई भी महिला है मान लिया कि कोई भी पुरुष है, पुरुष ये अभिमान कर सकता है कि मैं पुरुष नहीं हूं, कोई महिला ये कर सकती है कि मैं पुरुष हूं, संभव नहीं। एक आदमी बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, दरिद्र है, वो समझ सकता है कि मैं खूब धनी हूं, कभी संभव है, किंतु भक्त लोग रास्ते के फकीर होते हुए भी, निष्किंचन होते हुए वो समझेंगे हम विश्व के सम्राट हैं, वो समझ लेंगे। क्यों, उनके पास में भगवत भक्ति की ऐसी अतुल संपदा है जो कभी क्षय नहीं हो सकती, इसलिए उनका नाम है महाराजा, महाराजते माने खूब अच्छी तरह से वो विराज, इसलिए बिने पैसे के महाराजा है। और महाराजा लोग दरिद्र हैं कि उनको और जरूरत है, इनको कोई चीज की जरूरत, सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुखदेव गोस्वामी उबाचो, ऐसा करते, उनके पास में कुछ नहीं किंतु वो महाराजा हैं, सुखदेव गोस्वामी। यहाँ के राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं राजते, उनका हृदय अशांति से भरा हुआ, ताज है कांटों का, इसलिए ये जति लोग निराश्रय हैं उनका कोई आश्रय नहीं बचाने वाला नहीं, और भक्तों के आश्रय हैं भगवान। क्यों निराश्रित हैं ये लोग? स्वहंगवादी लोग भगवान के चरणारविंदों के प्रति भक्ति को त्याग करके शून्य व आत्म उपासना करते हैं, भगवान की उपासना नहीं करके आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करते हैं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या है? सत नहीं असत नहीं, सत असत अनर्विचनित्व। सत भी नहीं है असत भी नहीं है, सत असत भी नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। ये नहीं कहेंगे जो कुछ नहीं, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, वचन के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। यहां संत शब्द का प्रयोग किया गया है, सत यही लोग महत्पुरुष हैं। तद्वत न संत, संत माने यहां पर वैष्णव, भगवान की भक्ति करने वाले। भज वासुदेव वसुदेव नंदन, यहां पर वासुदेव वसुनंदन का तात्विक अर्थ ले जाएंगे कृष्ण तत्व, नंदनंदन जैसे गोपियों ने कहा है। अरणम अरणम माने क्या होता? अरण माने शरण, दूसरा कोई शरण नहीं है इस जगत में, इसलिए केवल मात्र कृष्ण के चरण कमल ही हमारे लिए अरणम शरण। यही उनके लिए शरण नहीं है, इसलिए राहित है, शरण रहित है। सो हम मैं बस, कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेने के कारण अनाथ हैं वो। भक्त समय कैसे होते हैं? सब समय सनाथ, इस जगत में भी सनाथ, गुरु को अपना नाथ मान लेते हैं, वैष्णव को अपना नाथ मान लेते हैं, रक्षक मान, और उस जगत में तो कृष्ण तो है ही है नाथ, इसलिए वो निर्भय रहते हैं। इसीलिए देवता लोग बोल रहे हैं, ननामते देव पदारविंदम प्रपन्न प्रपन्नता प्रपन्नता अप्य आशया आतपत्रम जन्मूलकेता जतयो अंजसोरु संसारतापम बहिरुत्क्षिपंती। देवता लोग मथुरा में आए कंस के कारागार में, देवकी एकदम दीप्त हो रही है तेज से, आकाश मार्ग से उनके तेज को देख करके बड़े प्रभावित हुए, वहीं से स्तव स्तुति उनकी वंदना करने लगे, स्तुति करते हुए वंदना कर रहे हैं। देखता है जैसे ये भगवान इनके जरूर हृदय में है, नहीं तो इतना तेज हो नहीं सकता। इसलिए वो लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभो ननामते देव पदारविंद, आपके चरणों को मैं पुनः पुनः हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। यहां पर ननाम माने आश्रय लेना, नमा माने क्या? नमा स्वाहा, सब एक ही तात्पर्य पर रखा। नमा माने अपने अहंकार को छोड़ करके मैं आपका शरणागत हो रहा हूं, स्वाहा माने अपने अभिमान को ये संसारी छोड़ करके मैं अपने को अर्पण कर रहा हूं। इसलिए आपके चरण कमलों को आश्रय करके यति लोग संसार के दुख को प्रत्याग कर। यहां जति शब्द का अर्थ अलग बतलाएंगे, अभी बतलाया जति मैंने क्या? सोहंगवादी अद्वैतवादी लोग जो योगी लोग हैं सन्यासी लोग हैं उनको बतलाया। वेदों में लिखा अहम आत्मा आनंदमयो, आनंदमय ये आत्मा है। यहां पर आत्मा शब्द का अर्थ क्या होगा? परम ब्रह्म भगवान कृष्ण, और कहीं कहीं पर इसके जीवात्मा के लिए प्रयोग होता है, दौ सपर्णा सायुजा सखायो, वहाँ पर आत्मा शब्द का जो है वो जीवात्मा के लिए और परमात्मा भगवान के लिए, और कहीं कहीं मन के लिए आत्मा का, कभी शरीर के लिए आत्मा का व्यवहार होता है, इसलिए प्रसंग के अनुसार में उसका अर्थ हम निकालेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जति लोग संसार क्लेश को दूर से प्रत्याग, उच्छिपंती माने क्या, पैर उछाल रहे हैं, बच्चा छोटा सा बच्चा या बच्ची उछालते उछालते सकटासुर आया, गाड़ी का रूप धारण करके या गाड़ी में आविष्ट हो गया और थोड़ा सा टच हुआ और ऐसा चलाया जैसे वो गाड़ी उलट करके कहाँ चली गई, गाड़ी नहीं गाड़ा, चार चक्के वाला गाड़ी एकदम गिर करके उच्छिपंती। उसी प्रकार से ये संत लोग जो हैं जति लोग कौन, सन्यासी, भगवान के चरणों को आश्रय करके और संसारिक दुखों को उच्छिप में ऐसा फेंक देते हैं जब कभी वो दुख लौट करके नहीं आता। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से वो इन दुखों को सदा के लिए दूर कर देते हैं। हम लोग कहेंगे जो अभी तक हम भगवान का इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं किंतु दुख तो गए नहीं, दारिद्र भी नहीं गया, कहते अभी तुम लोग अभी भजन नहीं कर रहे हो ठीक से जैसा करना चाहिए। एक लड़का स्कूल में स्लेट पेंसिल या कागज लेकर स्कूल में जाने आने लगा, बड़ी मुश्किल से अभी क ख ग घ लिख सकता, अभी शब्दों की योजना नहीं कर सकता, और वो अपने को समझे जब मैं शिक्षित हो गया तो ये भूल है। यहां तक कि मैट्रिक के स्टैंडर्ड का आजकल 12वीं क्लास बोर्ड इत्यादि अथवा बीए तक भी एमए तक भी पढ़ लिया वो कह देगा मैं विद्वान हो गया, अरे एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकते वो और अपने को विद्वान, मैं एमए पास, अच्छा होने से भी विद्या वहीं पर समाप्त हो गई, मैं तो समझता कि वहां से आरंभ होगी किसी चीज में एक्सपर्ट होने पर। और भगवत विषय में ये विद्या भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जितना समझते हैं, हाँ आरंभ किया है ठीक है सौभाग्यवान है साधुओं का संग हुआ, किंतु जो भक्ति जो भगवत सेवा है इसकी उपलब्धि है ये भी नहीं, अभी विषय में अभी चित्त जा रहा है इधर उधर जा रहा है, कैसे हो गई इसलिए नहीं, अभी बहुत कुछ बात ऐसे करते 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 लाखों करोड़ वर्ष लग जाए। भक्तों के संग में यह संभव पर हो सकता है उनकी सेवा के द्वारा। वो लोग संसारी जीव जिन्होंने भक्तों का आश्रय नहीं लिया है, ज्ञान लाभ करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वो तीनों तापों से दग्ध होते रहते हैं, क्योंकि आपके जो चरण कमल में प्रपन्न हैं शरणागत हैं वो भगवान के चरण कमल उनके लिए छाता स्वरूप है छत्र स्वरूप, और जिनको भगवान का आश्रय नहीं है वो छत्र नहीं है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जति लोग अपने ये जो जति हैं जो जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय किया है ये सन्यासी और जति नहीं है, ये तो एक कह दिया गया, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा ना वही ये कह रहे हैं, ये बेश मात्र लिया है, किस लिए संसार को त्याग करने का एक चिन्ह मैंने लिया है मुकुंद सेवा का, ये व्रत है सन्यासी और जति ये नहीं, ये कर्मी सन्यासी या ज्ञानी सन्यासी नहीं है, ये भगवत भक्त हैं जिन्होंने समाश्रय किया है भगवान के चरणों को। इसका तात्पर्य सनातन गोस्वामी ने जति भगवान के चरण कमलों में आश्रय कर इस महत संसार से भयानक संसार से के जो दुख हैं इनको चरणों से फेंक दिया है, कौन जति लोग। यहां अब जति शब्द का ये तात्पर्य बतला रहे हैं जिन्होंने भगवान के चरणों को आश्रय के उसको जति नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं भक्त कहते हैं। तो यहाँ पर जति शब्द का किस लिए कहा, इसलिए कहा उन्होंने सर्वस्व एकदम पर त्याग कर दिया। ये त्याग करने का जो सैंपल है चिन्ह है क्या, दंड और डोर कॉपी, दंड भी नहीं है डोर और कॉपी। किस लिए डोर कॉपी यदि ग्रहण कर लिया तो समझो अब संसार को उन्होंने सांसारिक संबंधों को त्याग कर दिया है। दंड केवल जीवन रक्षा के लिए और कमंडलू पानी पी करके रक्षा करने के लिए, असल में डोर और कपिन की ही शुद्धि होती है और उसी में धरणी और शेष जी का अधिष्ठान बनाया जाता है, वही हमारे को रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वो बतलाते हैं इन्होंने सर्वस्व कुछ चरणों में भगवान के प्रत्याग करके भगवान के चरणार बिंद का उन्होंने आश्रय लिया है, इसलिए सर्वत्याग की सूचना करने के लिए ये दिखलाया गया। ये तो उन्होंने भी किया है, सब कुछ त्याग किया है किंतु भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, और इन्होंने भगवान का चरणों का आश्रय करने के लिए गौण रूप में इसका प्रत्याग किया है। उनका मुख्य है प्रत्याग और इनका क्या है गौण। इसी तरह से एक परम संत नारद जी वीणा बजाते हुए किसी के दरवाजे पर पहुंचे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन हम बजा रहे, उनकी क्रीड़ाओं का वहां पर वर्णन कर रहे। और एक साधारण जोगड़ा वो ले लेता है, वो
एक तारा
बयाला या सारंगी, हमने देखा बहुत से योगी लोगों को बचपन में दल का दल आते थे, भरथरी का चरित्र गान करते और कपड़ा लत्ता जो कुछ होता वो मिल जाता लेकर के चले जाते, गेहूं चावल आटा जो कुछ मिलता बाजार में फिर बिक करके पैसे ले लेते और फिर चले जाते, ये भी एक तरह के योगी। तो जो भक्ति है भक्त को ग्रहण भक्ति का ग्रहण करने वाले वो गौण रूप में संसार को प्रत्याग करने का ये दिखलाने के लिए संन्यास अवलंबन करते हैं। इनका संन्यास है भगवान के चरणों में अपने को समर्पण करने के लिए भक्ति के लिए, और उनका क्या है उनका वही प्रधान है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। जति क्यों कहा गया, इसलिए कि उनके बेश मात्र से ही जति कहा गया, किंतु भक्ति मात्र से जब विचार करें तो ये शुद्ध भक्त हैं, महत्पुरुष ये लोग हैं। जो लोग आत्मा को स्वयं को अपनी आत्मा को नारायण स्वरूप देखते हैं, नारायण नमो नारायण का खबरदार आप लोग मत करेंगे, कोई नमो नारायण भी कहेंगे दासोस्मी मैं उनका दास हूं, नहीं तो भक्ति रही हुई भी चली जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि मैं जो ब्रह्म हूं नारायण स्वरूप है, तुम है नारायण स्वरूप, इसका अतिरिक्त सभी माया है। हम लोग इसको माया नहीं देखते, क्या देखते हैं नश्वर वस्तुएं हैं किंतु भगवान का वैभव है, इसलिए भगवान की सेवा के उपकरण है उसको लगाओ। वो लोग देखते हैं झूठी माया, वो लोग इस रूप में नहीं देखते, कहते ये भी या तो ब्रह्म स्वरूप है नहीं तो माया देखेंगे, वैष्णव लोग ऐसा नहीं देखते, भगवान की सेवा के ऊपर उपकरण है और ये संसार भगवान की सेवा का शिक्षागार है। शिक्षागार माने पाठशाला, जैसे कि स्त्री अपने पति की सेवा करती है उस वृत्ति से हम कृष्ण की सेवा करें, जैसे पिता अपने बच्चे का पालन करता है उसी प्रकार से मैं पिता होकर के कृष्ण का पालन करता हूं, जैसे एक नौकर भगवान की सेवा करता है मैं भी उनकी, ये सब पाठशाला है। जिस प्रकार से एक स्त्री अपना सर्वस्व भाव देकर के अपने पति को या प्रियतम की सेवा करती हम भी वैसा ही करें, विषय प्रति अच्छी हमार से ही मतो प्रति हो उपचार, यही भक्ति है। अद्वैत बोध मात्र या पर मायावाद के अनुसार में अद्वैत बोध है, मैं ही सो हम मैं ही वही हूं नमो नारायण इत्यादि, ये अपराध मूलक विचार है। आजकल ब्रज में कुछ ऐसे ही भाव है, नहीं समझते हैं भक्तों को, नहीं समझ पाते भक्ति नहीं समझ पाते कृष्ण तत्व नहीं समझ, इसलिए सबको मूढ़ी और मिश्री सब एक दर, साक को वही दर, टके सर भाजा टके सर खाजा चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा, यह सोहम बाद है। गुरु चेला कहीं गए, चलते चलते चेले को भूख लग गई, कहे गुरु जी बड़ी भूख लगी है, ठहर जा ये 2 रुपया ले जा, बाजार से कुछ ले आओ खाने के लिए। तो वो गया बाजार में, पूछा भाई मुड़ी क्या दर, मुरमुरा क्या दर, 2 रुपया किलो। रबड़ी क्या दर है, 2 रुपया किलो। मिश्री क्या दर है, 2 रुपया किलो। नमक क्या दर है, 2 रुपया किलो। हर चीज 2 रुपये, हर चीज 2 रुपये। अरे वाह, छेना क्या दर है, 2 रुपया। अरे वाह, तो बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छी जगह है, 2 रुपये का छेना ले आया दूध का। गुरुजी कहा, गुरुजी आज बाजार में गया बड़ा देखा सभी कुछ 2 रुपये, मैंने छेना ले आया। उसने बनाया खूब अच्छी तरह से छेने का, मिठाई उठाई संदेश बनाया या कुछ किया, दोनों मिल करके खाए। गुरुजी चिंता करें, ये मरा बेटा। गुरुजी ने कहा जी अब चलो यहाँ से जल्दी से चलना है। कहा जी अब गुरुजी मैं नहीं जाता, कृपा करके हमको यहाँ पर अभी 1 महीना रहूँगा, शरीर मेरा बहुत खराब हो गया है, दुबला पतला हो गया है, मैं जरा खा करके पुष्ट होने के बाद में तब फिर आपके पास में जहाँ रहेंगे मैं वहीं आ जाऊँगा। अरे मेरी बात मान, तू चल यहाँ से। कहने गुरुजी आपके चरणों में विशेष निवेदन है, आपकी बहुत दिनों तक सेवा की, हमको थोड़ा सा छेना खाने के लिए या रहने की इजाज़त दे दीजिए। मानेगा नहीं, अच्छा तो एक बात करना, जब तुम्हारे ऊपर में कोई विपत्ति आए तो उस समय हमको बुला लेना। अच्छी बात है, गुरुजी तो चले गए। कह गए देखो यहाँ रहना ठीक नहीं है। कुछ दिनों के बाद में खा पी करके बस मोटा हो गया। मोटा होने के बाद में ऐसे ही घूमता था और छेना खाता था। कुछ दिनों के बाद में उस गांव शहर में चोरी हुई। चोरी होने के बाद में जिसके घर में चोरी हो गई, काफ़ी चोरी हो गई, उसने राजा के पास में जा करके मुकदमा किया, हमारे घर में चोरी हो गई। राजा ने पूछा जैसे वो चोर कैसे थे, हुलिया बतलाओ तो, मोटे थे, काले थे, गोरे थे, दुबले पतले थे, कितनी लंबाई चौड़ाई। उसने कहा जी इतना तो मुझे मालूम, लेकिन तो मैंने देखा जब बड़े मोटे थे। अच्छा ठीक है, कोई जाओ कोई बात। दूसरे हमने पुलिस को आदेश, हमारे राज्य में जो जो मोटे हैं उन सबको पकड़ लाओ और उनको सूली दे देंगे। तो देखा जो शहर में सबसे यही मोटा था, मोटा तगड़ा हो रहा था, अभी इसको झट पकड़ लेकर के ले जाएगा के पास। अभी से कोई मोटा तो नहीं, अभी यही सबसे मोटा है, अभी सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, राजा ने कहा जी तुम कुछ ही समय कुछ चाहता है, खाना पीना कोई कोई बात है। कहा हम एक बात है, मैं अपने गुरुजी से मैं 1 सेकंड के लिए मिलना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी वहाँ पर हैं, उनको खबर दे दिए जा आ जाएं, इसके बाद में आप जैसी इच्छा। अच्छा ठीक, गुरुजी को बुलाहट गई, गुरुजी दौड़ करके आ गए, देखा जी हमारे बेटे पर संकट आई है, ठीक हुआ, नहीं तो ये मेरी बात नहीं मानता। उन्होंने आकर के कहा जी क्या बात है भाई, अतः हमको सूली चढ़ा रहे हैं, किस लिए, तो मोटा है, चोरी हो गई और चोर मोटा था इसलिए हमको पकड़ लिया, हमने तो चोरी की नहीं। अच्छा बात, नहीं कोई बात, हम जैसा कहते हैं वैसा करना, अब हमारे साथ में यहाँ से चल पड़ना, यहाँ पर नहीं नहीं रहना चाहिए। अच्छा गुरुजी आप बचा दीजिए, अब मैं कैसा गलती नहीं करूँगा। उन्होंने जा करके शैलेश को कह दिया जो मैं कहूँगा वैसा ही करना, मैं कहूँगा जी मैं सूली चढ़ूँगा और तुम कहना जी मैं सूली चढ़ूँगा और दोनों लड़ जाएंगे, इसके बाद में मैं सब कुछ देख लूँगा। सूली के यहाँ जा करके इसने कहा गुरुजी ने जब देखो बेटा तुम रहने दो मैं सूली पर चढ़ता हूँ। तो चेले ने कहा जी नहीं नहीं गुरुजी मैं चढ़ूंगा। भजन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चढ़ूंगा, नहीं मैं चढ़ूंगा, तुम हटो मैं चढ़ूँ। वो गुरुजी को हटा रहा है वो उनको। राजा ने कहा जी देखो तुम मरने के लिए, दोनों सूली पर चढ़ने के लिए, ऐसा क्यों? तो पूछा जी भाई ऐसा लड़ाई क्यों हो रहा है मरने के लिए? उनके गुरुजी ने कहा जी आज बड़ी सुंदर शायद है, शुभ लग्न है, आज के लग्न में जो सूली पर चढ़ेगा उसी का वैकुंठ गति होगी, सीधे वैकुंठ में जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसी शुभ और साइत और घड़ी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बेटा नहीं चढ़े, आज मैं स्वर्ग में वैकुंठ में जाऊँ और ये कहा जाए नहीं चढ़ूंगा। तुमने देखा मेरी मैया बहुत बूढ़ी पुरानी हो गई है, बहुत दुखी रहती है, बीमार रहती है, तो क्यों नहीं उसको वैकुंठ भेज दिया जाए? कहे नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, मेरी मैया चढ़ेगी। कहे हजूर ऐसा अब हम लोग को सुजोग कहाँ मिलेगा, हम नहीं हम ही चढ़ेंगे। वो कह रहे मैं चढ़ूंगा, और इतने में मैया ने सुना कहा जब मैं चढ़ूंगी। राजा ने कहा नहीं मैया को चढ़ने दे, ये लोग नहीं चढ़ेंगे। बस सबको कैंसिल करके मैया को सूली पर चढ़ा दी। कहा जी चल बेटा यहाँ जल्दी भाग, यहाँ पर टके शेर भाजा और टके शेर खा जा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सभी का दर एक ही है, भक्ति का वही दर, जोगी वही, जोगड़ा वही, सिंदूर लगा लिया, कपाल किसी मरे हुए को ले लिया, पियक्कड़ है, बदमाश है वो भी एक, ये बंबई की जो तार काए हैं वो भी वही, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, आजकल मुख्यमंत्री सोचते हैं कि आज यदि प्रधान तारका हो जाऊं तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, होड़ लग रही है, ये राज्य रहने लायक नहीं है। इसलिए सो अहम बात से बहुत दूर होकर के भक्ति पर चलना चाहिए। कैसी भक्ति? ब्रज रस की भक्ति। ब्रज रस की कैसी भक्ति? कृष्ण के चरण कमलों में गोपियों के जो भाव हैं ऐसी। गोपियां कहते हैं जब उठिए कृष्ण क्या करते हैं, उठ जाते हैं। गोपियां कहते हैं बैठिए तो बैठ जाते हैं। गोपियों के हृदय कृष्ण हैं और कृष्ण का हृदय वो गोपियां। इसे बढ़कर के भक्ति राज्य में और कोई उदाहरण नहीं। आज यहीं पर हम समाप्त करें। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो उसमें हमने कल विस्तर रूप से यत्पाद पंगज पलाश विलास भक्त्या इत्यादि का वर्णन किया। साधु संत की कितने प्रकार के विघ्न भी होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं यदि कृष्ण की, जो लोग कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। कैसे? उसी का कल हमने वर्णन किया। ये भी बतलाया कि जो जति लोग भगवान के चरण कमलों का हृदय में ध्यान करते हैं, स्मरण कीर्तन करते हैं, वो यथार्थ में वो जति नहीं है, वो तो बेश मात्र को ग्रहण करते हैं जति का, इसलिए कि वो संसार को छोड़ दिए, वो कृष्ण का भजन करने के लिए ऐसा करते हैं, उनकी निष्ठा के लिए। न वैष्णव लोग न सन्यासी हैं, न गृहस्थ हैं, न वानप्रस्थ हैं, वो राधा कृष्ण के सेवक हैं। न धर्मम न धर्मम सुतिक निरुक्तम, वो धर्म अधर्म ये कुछ नहीं जानते, बस कृष्ण की राधा कृष्ण की एकांतिक सेवा जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं जैन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन तई अस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आरिज्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत ज्योष्मदानुग्रय। देवता लोग कह रहे हैं कृष्ण जब माता के गर्भ में थे तो उस समय में स्तुति कर रहे हैं वो, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मान, जो भगवान के प्रिय होते हैं, सेवक होते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि रूप भक्ति करते हैं, वो तो बड़े बड़े विघ्न डालने वाले देवताओं के मस्तक पर पैर रख करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। उनके साधन भजन में भी ये लोग विघ्न बाधा नहीं दे सकते, किंतु एकांतिक रूप में जिन लोगों ने आश्रय नहीं किया है गुरुचरणों का, आश्रय लिया भजे कृष्ण तारे नहीं त्यजे आर सब मौर्या, जिनका गुरुबल अधिक है, पुष्ट है, इधर इधर तो ठूहे हैं वो पीछे की तरफ में बैठे हैं, जिनके तरफ में मैं देख न सकूं, बूढ़े लोगों का काम है पीछे बैठे, जिनके केस पक गए हैं जो बुजुर्ग हैं वो लोग, जैसे हमारे ये हैं सब इधर में बैठे हैं, और जिनको कुछ सीखना है वो लोग इधर में बैठे हैं। तो अभी भी एक बूढ़ा हो रहा है, अभी तो कुछ सीखने की बात थी, अब बूढ़ा हो रहा है। तो जो लोग भगवान के चरण कमलों का लीला कथाओं का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, वो लोग तो विघ्नकारी देवताओं के भी, विघ्नों की तो बात क्या, विघ्न करने वाले देवताओं के भी सिर पर पैर रख करके चले जाते हैं। किंतु जे अन्य, इसके अतिरिक्त जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते, शुद्ध भक्त गुरु को ग्रहण नहीं करते, जिनका यह आश्रय पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है, वो क्या होते हैं? मरते हैं, जन्मते हैं। और जिनका गुरु ठीक है, शुद्ध भगवत भक्त हैं, कृष्ण उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते, जरूर उनका उद्धार कर देते हैं। जो अन्य इसके अतिरिक्त और जो दूसरे हैं कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी और गुरु कारण शुद्ध स्वरूप से नहीं करते, वो ये देखते हैं कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र, ये विचार करके तब लेते हैं। उनकी दृष्टि में कृष्ण तत्ववेत्ता की कोई जरूरत नहीं। कोई वर्ण में रहे, वर्ण के आश्रम के बाहर रहे, शूद्र भी हो चंडाल हो जो कोई भी हो, यदि कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वही गुरु है, दूसरे गुरु नहीं है। इसलिए उनसे यदि उनको आश्रय करता है तब तो वह विघ्नों के सिर पर पैर रख करके चला जाता है। और जो अन्य और जो दूसरे हैं विमुक्त मानी हम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम करने वाले, त्रिपुंड धारण करने वाले, यहाँ रहने पर भी काशी और हरिद्वार के शरणागत हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ के भावों को कोई संबंध नहीं। यहाँ का भाव क्या, नंद बाबा का भाव, यशोदा मैया का भाव, गोपियों का भाव, सखाओं का भाव, यहाँ का भाव है। जो इन भावों को ग्रहण नहीं करके ऐसे भाव सोहम इत्यादि करने वाले हैं, अपने को मुक्त मानते हैं, कह दिया मैं जगत गुरु हूँ, और मुक्त समझते हैं त्वयि अस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्धया, उनका जो भाव है अस्त हो गया है, अर्थात उनको भाव ही कभी पैदा नहीं हुआ। कहाँ पर, श्री कृष्ण के चरणों में, इसलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध है। जिन लोगों को कृष्ण भक्ति नहीं है उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। जो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, नमो नारायण कहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तब उनकी बुद्धि अशुद्ध है, उनका आश्रय न करें, उनसे बहुत दूर रहे। वो अपने को मुक्त मानते हैं तो भी कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं होने के कारण उनकी दुर्बुद्धि है, बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि कुबुद्धि है। आर्वीय कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनाद्र युष्मदांगय, वे बड़ी कठिनता से विषयों को से थोड़ा सा अनासक्त हो जाते हैं, इसी का उनका पद भोग, यही उनका पद है। विषयों से अनासक्त हो जाते हैं, विषयों से संपर्क तो छोड़ देते हैं, किंतु पतन्ति अधा, फिर अधा, अधा माने जन्म मरण के चक्कर में तितापों में ग्रस्त होकर के माया में डूब जाते हैं। क्यों, भगवान के चरण कमलों का आदर नहीं करते। अब इनका अर्थ दे रहे हैं, आपके भक्तों को छोड़कर के और दो दूसरे हैं, अपने को भले ही मुक्त माने, मुक्त अभिमान करते हैं किंतु मुक्त नहीं। जैसे अभी हम लोग समझते हैं यह शरीर ही मैं हूं, किंतु अभी मात्र है, मैं शरीर नहीं, ऐसे ही अपने को मुक्त मान लेते हैं, बड़े कष्ट से श्रेष्ठ पद लाभ करके भी, श्रेष्ठ पद क्या है, विषयों से थोड़ी सी आना सकती हो बस, अंत में पतित हो जाते हैं। क्यों, आपके चरणों में भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। श्रुति स्तव में भी ऐसा कहा गया है, श्रुति स्तव में भी इसी प्रकार से कहा गया, न समुद्धरंती समुद्धरंती यतयो हृदि काम काम जटा दुरधिगमो असतांग, यदि हृदय गतो अस्मृत कंठमणि असुतृप योगी नाम उभयतो अप्यसुखम भगवन न अपगता तत्काम तत्काम दन अधिरूढ़ पदा भवत। हे राजन, इंद्रियों को संयम करने वाले पुरुष यदि हृदय स्थित काम जटारूप वासना को दूर न करें। कोई आदमी खूब संयम करता है, खाएंगे नहीं फलाहार खाएंगे, उस समय बहुत थोड़ा सा लेंगे, सोएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मौन रहेंगे, ये सब करते हैं, इसका संयम तो कर लिया, किंतु भीतर में जो काम की जटा जाल है, कामों की वासना है, उसको दूर नहीं कर पाते, तो उनकी दशा ऐसे है जैसे किसी के गले में सुंदर मणि है और वो भूल करके इधर उधर खोजता है, मरी बड़ी कहाँ गई, मरी कहाँ गई। एक समय हमारे महाराज जी यहाँ थे तो एक दिन सवेरे अपना गमछा खोज रहे थे और गमछा खोजते खोजते बड़े बेचैन हमारे पास में आ जी, हमारी मेरी साफी थी, आज सवेरे से ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रही है, मुझको स्नान करने में विलम्ब हो रहा, किसी ने ले लिया, क्या हो गया। तो मैंने कहा महाराज जी आपके ये सिर पर क्या है, तो उन्होंने देखा ऐसे, अरे यही तो मैं इसी को सवेरे से खोज रहा हूँ। ठीक ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में है, ये मणि स्वरूप है। और उनसे प्रार्थना, उनका भजन नहीं करते, वासनाओं का जटा समूह जा, लंबा लंबे जटा देखेंगे, 15 हाथ 20 हाथ जटा बना करके यहाँ पर रख लेते हैं, अब इतना भार ये चल नहीं पाते, ऐसे ही वासनाओं की जटाएं हृदय में भरी हुई हैं, भोग की कामना, और ऊपर से संयम करते हैं, बात बोलते नहीं, स्लेट पर लिखते हैं, एक रोटी का सवाल है, लिख करके रख दिया, कोई कपड़ा टपड़ा नहीं पहने हैं, मंदिर बनाएंगे, बड़े बैरागी आदमी, कुछ नहीं लेते हैं, केवल 1 किलो राबड़ी रोज लेते हैं, ऐसे ही संयमी लोग, इले इंद्रियों का भोग उनमें पूरा है, उसी तरह से भगवान कंठ में है और उनको देख नहीं पाते। इसी तरह से करें, आप उनके हृदय में हैं, आपको नहीं खोजते, आपके चरणों की भक्ति नहीं करते, अतः कुछ योगी लोग सुख शांति चाहते हैं, ये कभी भी संभव पर नहीं है, आप उनके लिए दुर्लभ हैं। इसलिए इंद्रिय पारायण योगाभ्यास, ऐसे योगी, अभी पेपरों में एक योगी का नाम खूब जोर से आ रहा है, शायद जेल में जाने की नौबत हो रही है, कोई है, बड़े नामी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इत्यादि सब बड़े बड़े गवर्नर जनरल सब उनके पास में जा रहे हैं, अब वो जेल की हवा देख रहे हैं, यही ऐसा ही होता है। उनका पैलेस कैसा है, गवर्नर का भी पैलेस ऐसा नहीं होगा, उससे भी करोड़ों रुपयों के पैलेस उनके बिल्डिंग बनी हुई है, मूर्खों को 2-4, 10, 50, 100, 200 मूर्खों की कमी नहीं, खाना पीना कपड़ा दे करके अपने आश्रम को भर रखे हैं, कोई शिक्षा नहीं, डंडे हाथ में है, त्रिशूल है, तलवार है, बंदूक है, ये सब फौज उनके पास, ये लोग लोक परलोक इनका सब बिगड़ जाए, और कहते हैं कि मैं महेश जोगी हूं, कोई महेश जोगी बनता है, कोई कुछ बनता है, धन अर्जन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संग्रह के लिए क्लेश और भोग, वैभव प्रकाश अशंका, यह लोक में दुख, इस लोक में भोगों के लिए मरते हैं, संग्रह के लिए जेल भी जाते हैं, और परलोक में परलोक को भी नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग। इसलिए स्वधर्म का भी त्याग किया, माता पिता की सेवा भी त्याग किया, उधर में कुछ लाभ नहीं हुआ, स्वधर्म का त्याग करने का नहीं, परलोक में और इस लोक में नरक में जाते हैं। इस प्रकार से जोग वासिष्ठ में भी कहा गया, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति जो वदेत महानरक जालेषु तेनैव विनियोजितः। जो मूर्ख और अज्ञ व्यक्ति अर्ध प्रबुद्ध माने क्या, विषयों से सुख नहीं होता, ये तो जानते हैं, यह शरीर यह संसार माया कल्पित है, इसको भी जानते हैं, ये आधा तो ज्ञान हो गया, किंतु भगवान की कृपा से ही सब कुछ दूर होता है, ये उनके नहीं है, इसलिए अर्ध प्रबुद्ध कहा गया, अर्ध बुद्धिमान है ये लोग। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, आप ब्रह्म, मैं भी सब कुछ ब्रह्म,
ऐसा कहते हैं, और इस अपराध के कारण नरक में बार बार जाते हैं, भोग करते हैं। कभी मत कहो जो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का दास हूँ, दासोस्मी दासोस्मी कहना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा गया है, विषय में ममता, खूब ममता है, और कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। जो ऐसा कहता है कोटि कल्प तक वो सहस्त्र सहस्त्र नरकों में सड़ते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मैं ब्रह्म हूं कहते हैं और विषयों में मरते हैं। एक भारत के बहुत बड़े विख्यात कोई संत अपने को कहते हैं ऑल इंडिया साधु सम्मेलन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्त्री के पति को मरवा करके और उस स्त्री को हड़प लिया। अब सुनते हैं कि उन पर केस चल रहा है, जेल में हैं, चूसे हुए हैं, ऐसे ही सब होता है। ये लोग बड़े बड़े योगी जगत गुरु बनते हैं, अम ब्रह्म भाषवी वाले ये। दूसरे पुराण में इसलिए अहम ब्रह्मास्मी जो कहते हैं उसका अन्न जो खाते हैं ना वो भी नरक में जाएंगे। जरा समझो, जो ऐसे लोगों के घर पर उनका अन्न खाते हैं अहम ब्रह्मास्मी, उनको भी जम दिया रिहाई नहीं करेगा। इसलिए पूरी और लड्डू खा लिया उनका, उनके घरों में जा करके बड़े प्रेम से बुलाएंगे, और यदि ले लिया तो तुम्हारी भी दुर्दशा होगी। इसलिए समझ लो, जहाँ तहाँ जैसे तैसे लोगों के यहाँ न खाओ, विशेष करके चातुर्मास में खूब निष्ठा के अनुसार में व्रत समर्पण करो। जहाँ तहाँ जैसे तैसे खा लिया ऐसे लोगों के यहाँ, साधु में कोई भेद नहीं, ऐसा मत समझो। भगवान का नाम आश्रय करने वाला भक्त जो है वही आदरणीय, और नहीं तो बड़े उदार बन करके सभी मेरे लिए तो समान है, वो भी सभी। पुराण में भी ऐसा लिखा गया है, संसार सुख संयुक्तम ब्रह्मा ब्रह्मा अहम इति बादिन कर्म ब्रह्म परिभ्रष्टम तम तजेत अंतजम। संसार सुख में मग्न है, संसार सुख माने स्त्री पुत्र परिवार, अपनी स्त्री पुत्र परिवार ने दूसरों को बना लिया, और ऐसा व्यक्ति यदि अपने को ब्रह्म कहता है तो वह कर्म ब्रह्म परिभ्रष्ट व्यक्ति को चंडाल के समान दूर से छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। चंडाल के समान, चंडाल माने क्या, गो हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, जो चंडाल व्यक्ति है उसके समान उसको छोड़ देना चाहिए, उसे कोई भी आदान प्रदान प्रीति इत्यादि नहीं होनी चाहिए। इस विषय में अधिक बोलना आवश्यक है, ये सब शास्त्र की बातें हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं इनको पढ़ करके सुना रहा हूं। अब इस श्लोक में अब आइए, कौन सा श्लोक, पहला श्लोक साधु संघ का क्या महात्म है। महात्म एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो जैन विप्रोसौ सद्य अभूत तत्स्वरूपवत्। साधु संघ की ऐसी महिमा है जो परम मुक्त जो स्वरूप थे उनकी समान ही उनका जो ब्राह्मण था वो भी ऐसा ही बना, डॉक्टर ने जन शर्मा बन गया, वैसा ही गोलोक वृंदावन में पहुंच करके कृष्ण का सखा या बन गया। अब उस पर आ रहे हैं, अब इसको कंक्लूजन करते हैं। यहाँ पर प्रस्तावित श्लोक में करें महत संगम का महात्म ऐसा है, उसका प्रभाव ऐसा है कि भगवत भक्ति में अनभिज्ञ ब्राह्मण भी संपूर्ण रूप से भक्ति का फल पा गया, उसको प्रेम उत्पन्न हुआ। भक्ति के विषय में नहीं जानता था, उसने कोई साधन भी नहीं किया, केवल गुरु जी से सुना एक दिन में, और सुनने के बाद में गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, बस साथ ही साथ में उसको प्रेम हो, कोई साधन नहीं, ये महात्मा है। ये कौन करेगा, उत्तम वैष्णव, उत्तमों में भी जो परम उत्तम है और मध्यम जो है वो क्या करेंगे, वाणी के द्वारा उसकी सहायता करके उसके हृदय की ग्रंथियों को छेदन करके वासनाओं को दूर कर देंगे और कृष्ण भक्ति लाएंगे। और उन लोगों में जो कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ माने ये कनिष्ठ मत समझो, कनिष्ठ भक्त नहीं, उन उत्तमों में जो कनिष्ठ हैं अर्थात मध्यम अधिकारी से भी उसमें प्रवेश कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो कृपा करके धीरे 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 ऐसे गुरु के पास में भी ले जा सकते हैं, स्वयं भी धीरे 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 उसको हरि कथा प्रवेश में प्रवेश करा करके, श्रवण करा करके, वही भक्ति लता का बीज दे करके उसको ले जाए। तीनों प्रकार के गुरु, यदि भक्ति का महात्म नहीं जानता है तो भी हम लोग ऐसे में से समझ, हम लोग हरि भक्ति का महात्म नहीं जानते, गुरु जी हम लोगों को लेकर के बड़े आदर के साथ में रख करके सब प्रकार की व्यवस्था करके आश्रम में रखा और तरह तरह के सुयोग दिए, जब तक इस जगत में प्रकट रहे हम लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं दी, पढ़ने के लिए सुविधा दी, साधन भजन करने के लिए सुविधा दी, हरि कथा श्रवण कराने की सुविधा दी, हरि नाम मंत्र इत्यादि दिया, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के रूप में रहे, और इसके बाद में अप्रकट होने के बाद में भी उनकी लंबी भुजाओं की छत्र छाया में हम लोग इसलिए भी बचे हुए हैं, इसीलिए आप लोग भी उसका अनुसरण करें यदि भक्ति चाहते हैं। श्री स्वरूप बहुत प्रयत्न और बहुकाल जिस साधन भजन